Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे क्या?
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
एक बार सब लोग मिलकर गाओ, सब लोग मिलकर गाओ। राधा रानी के मान मंदिर पे आप आए हो।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
जय कृष्णा जय श्री कृष्णा
जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा
जय कृष्णा 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 श्री कृष्णा
जय कृष्णा
जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्री
मान मंदिर धाम की। श्री गहबर वन की, श्री गहबर कुंड धाम की, श्री मोर कुटी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा और बरसाने का इतिहास आपको बता देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी तीन पत्नियां सोचती थी कि वो सबसे बड़ी सती हैं, और अब एक बार चर्चा चल रही थी उनके पतियों के साथ, तो उनके पतियों ने कहा कि आप महासती नहीं हो, पृथ्वी पर एक महासती है जो आपसे भी बढ़कर है। थोड़ी सी ईर्ष्या हुई माताओं के मन में, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, आप जाके उनकी परीक्षा करो और हमारे लिए प्रूव करो कि ये पृथ्वी पर जो है वो सबसे बड़ी महासती है। तो उन्होंने अत्रिप मुनि के पत्नी का जिक्र किया था, अनसुया देवी का। तो फिर तीनों देव पृथ्वी पर गए अत्रि मुनि के आश्रम में, ऋषि का भेष धारण करके, और वहां पर उन्होंने भिक्षा मांगी, भवती भिक्षां देही। तो उस समय अनसुया देवी अपने पति की सेवा कर रही थी, तो बाहर आती है भिक्षा लेकर। तब ये ब्राह्मण कहते हैं ऋषि कि हमारी एक शर्त है कि आपको अगर हमको भोजन देना है तो हमें निर्वस्त्र होकर आपको भोजन देना होगा। तब वो समझती है कि इसमें कुछ षड्यंत्र है इनका, तो वो अंदर जाती है। बहुत महान भक्त थी वो भगवान की, और पति की भी बड़ी परायण सेवा करती थी। पति जो सवेरे पूजा अर्चा के लिए कमंडल में जल को अभिमंत्रित करते थे, मंत्र बोलकर जल तैयार करते थे और फिर उसको पूजा में उपयोग करते थे, वो कमंडल लेके आती है, उसका जल जो है तीन लोगों पर छिड़क देती है। जैसे तीन लोगों को छिड़क देती है तो तीनों महादेव जो आए हैं वो निर्वस्त्र बालक बन जाते हैं, छोटे से बालक। फिर उनको बिठाकर स्वयं निर्वस्त्र होकर उनको भोजन कराती है, क्योंकि बालक के सामने कोई संकोच नहीं होता है, पहले उनको बालक बना देती है। तो वो बालक जो है वो इतने माता अनसुया से आसक्त हो जाते हैं, तो वही रह जाते हैं, वही उनके वात्सल्य का अनुभव करते हैं। बहुत समय बीतता है, यहाँ पर जो उनकी पत्नियां हैं वो कहते बहुत दिन हो गए परीक्षा करने गए, बहुत लंबी परीक्षा चल रही है। तो देखने गई वो, पृथ्वी पर आती है, उनको पता है कहाँ गए हैं, तो अत्रि मुनि के आश्रम में आते हैं। अनसुया जी को पूछते हैं कि हमारे पति देव कहाँ हैं, तो वो कहते हैं वो देखो वहाँ खेल रहे हैं। तो देखते हैं तो तीन रेंगते बालक वहां पर खेल रहे हैं, तो कहते नहीं वो हमारे पति हैं, कृपा करके उनको हमको लौटा दो। तो फिर पति के कमंडल का जल लेके आती है, उन पर छिड़कती हैं, तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। तो वो तीनों उनसे माता के रूप में इतने आसक्त हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें आपको, हमें आपका पुत्र बनना है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश एकत्र होकर दत्तात्रेय के रूप में वो अनसुया के पेट से गर्भ लेते जन्म लेते हैं। तो दत्तात्रेय जी जो है वो अत्रि मुनि और अनसुया के पुत्र हैं। लेकिन साथ साथ सती अनसुया उन तीनों को शाप देती हैं कि तुमने आकर मेरी सतीत्व का परीक्षा करना चाहा, परीक्षा लिया मेरा, इसलिए आप सब लोगों में शाप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाओ। तो प्रभु रामचंद्र ने इन तीनों देवों को जो पत्थर बने हुए हैं अपने हाथों से ब्रज में बसाया, प्रभु रामचंद्र ने। तो ब्रह्मा जी को बरसाने में, शंकर जी को नंदगांव में, और विष्णु को कहाँ बसाया, गोवर्धन के रूप में विष्णु जी को बसाया। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों यहाँ पर पत्थर बनकर खड़े हैं और ठाकुर जी की लीला का आनंद ले रहे हैं, ये इसका इतिहास है। वैसे ही एक दिलीप राजा थे, आप जानते हैं भागवत में कथा आती है उसकी, दिलीप राजा जो थे उनके 60,000 जो उनके परिवार के सदस्य थे वो ऋषि का अपराध कर देते हैं, और ऋषि उनको श्राप देकर भस्म कर देते हैं और वो जलकर राख बन जाते हैं। तो दिलीप बहुत तपस्या करते हैं, उनके जन्म भर में तपस्या से भी उनको फल नहीं मिलता है। फिर उनके पुत्र अंशुमान और आगे जाकर उस वंश में भगीरथ आते हैं, और भगीरथ भी बहुत ज़्यादा तपस्या करके अपने फिर गंगा जी को लाकर अपने पुरखों को मुक्त कराते हैं। तो ये दिलीप जी जो हैं इनके ही वंश में रघु राजा होते हैं, जिनको हम कहते हैं रघुवंशी राम भगवान को कहते हैं। वो रघु जो है वो दिलीप के पुत्र हैं। इसका कारण है कि दिलीप एक बार जाते हैं वैकुंठ ने स्वर्ग में जाते हैं, वहां पर गाम धेनु गाय को दंडवत प्रणाम करना भूल जाते हैं। वैसे बड़े गाय के भक्त होते हैं लेकिन एक बाय द वे वो उसको प्रणाम नहीं करते हैं। तो काम देने उसको शाप देती है लेकिन वो शाप भी सुनाई नहीं पड़ता है उसको कि तुम निपुत्रुक हो जाओगे। लौट के आते हैं बहुत साल तक उनको पुत्र नहीं होता है, तो अपने गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं और कहते हैं कि क्या कारण है हमको पुत्र नहीं हो रहा है। तो वशिष्ठ जी ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि आपने तो कामधेनु का अपराध किया है और उसने आपको शाप दिया है, तो इसलिए आपको कामधेनु की सेवा करनी होगी। उसकी पुत्री नंदिनी यहाँ पर हमारे आश्रम में है, उनकी सेवा करो। बड़े दिल से उनकी सेवा करते हैं और वो सेवा करने से ही वो उस पाप से मुक्त हो जाते हैं और उनको फिर पुत्र होता है रघु, और इस रघु वंश में प्रभु रामचंद्र जन्म लेते हैं। इसी वंश में आगे जाकर अभय कर्ण राजा हुए हैं, वो भी बड़े गाय के भक्त थे। देखो गाय कितनी दयालु है, उसका अपराध हुआ उसकी सेवा किया, अपराध माफ हो गया, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। तो इस तरह से ये जो अभय कर्ण राजा हैं इनके पुत्र हुए रशंग राजा, और रशंग राजा ने ये बरसाने को पहले बसाया, सबसे पहले राज्य के रूप में बरसाना बसाया, और इसी के वंश में फिर आगे जाकर वृषभानु महाराज हुए हैं। और वृषभानु महाराज का थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ तुम्हें। जय हो। वृषभानु महाराज जो हैं, इनके सबसे जो जब तक जानकारी प्राप्त है वहां से मालूम पड़ता है कि देवराज गोत्र के हैं ये, और उनके परबाबा कंजभानु महाराज है। कंजभानु के पुत्र हुए मही भानु, जो सुबह हमने मंत्र गाया था ना, मही भानु सुतायैव, वो मही भानु, उनकी पत्नी सुखदा, और इनको 9 पुत्र हुए, और उनमें से 4 पुत्र वृषभानु महाराज से बड़े हैं और 4 छोटे हैं। और 4 जो बड़े हैं उनका नाम है महाभानु, सत्यभानु, गुणभानु और धर्मभानु, और बीच में वृषभानु महाराज है। और उनके 4 छोटे भाई हैं, रुचि भानु, वर भानु, सुभानु और रति भानु। और वृषभानु के विवाह जो है वो इंदुसेन और मुखारा देवी इनकी कन्या कीर्तिदा से हुआ। कीर्तिदा को 2 बहनें थी, नहीं 3 बहनें थी, भद्रकीर्ति, महाकीर्ति, चंद्रकीर्ति, और कीर्तिदा उनकी बहन थी। तो कीर्तिदा का वृषभानु से विवाह हुआ। तो महाभानु की जो कन्या है उनका नाम ललिता देवी है, इनका गांव उच्च ग्राम है। सत्यभानु का विवाह नव यौवनी से हुआ, उनकी कन्या का नाम विशाखा देवी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी जो अष्ट सखियां हैं दे आर फर्स्ट कजिन्स, 8 भाइयों की 8 कन्याएं और बीच वाले भाई की कन्या राधा रानी। राधा रानी के परिवार में सुदामा जी भाई और एक और कन्या है अनंग मंजरी, जो बलराम जी का अवतार है। बलराम जी माधुर्य भाव में अनंग मंजरी बनकर भगवान की सेवा करते हैं। तो सत्यभानु और नवयौवनी के पुत्री के रूप में विशाखा देवी आंजनोख गांव में रहती है। गुणभानु जी का विवाह समिता देवी से होता है और इनके कन्या का नाम चंपकलता देवी है। आप लोग चंपकलता के गांव में गए क्या? अगले ट्रिप में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, हम लोग एक यात्रा लेके गए थे वहां पर अभी। उसका नाम है करहपुर, करहला बोलते हैं उसको, करहला, चंपकलता देवी का गांव, बहुत सुंदर गांव है। चौथे भाई का नाम धर्मभानु है, उनका सुभगा देवी से विवाह हुआ और इनके कन्या का नाम है चित्रा देवी, जिसके गांव में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। ये चिकसौली गांव है, चिकित्सापुर कहते हैं, चिकित्सा वन भी कहते हैं और लोकल भाषा में चिकसौली कहते हैं। फिर रुचि भानु और भामा देवी, इनका विवाह हुआ और उनका कन्या हुई, उनका नाम है तुंग विद्या, जो कमई नाम का कामना वन है। यहाँ पर आगे जाकर करहपुर के आगे कामना वन है, वो उनका गांव है। फिर वर भानु छठे भाई, उनका रमा देवी के साथ विवाह हुआ और उनके कन्या का नाम है इंदुलेखा देवी, इनका गांव है रंकपुर बन यानी राकोली, ये भी पास में बहुत है। ये सब कैसा है, बरसाना जो है वो कमल के क्या कहते हैं उसको, वर्ल वर्ल मतलब जो केंद्रीय स्थान होता है ना कमल के बीच में, बहुत पुंकेसर होते हैं और बाजू में पंखुड़ियां होती है, वैसे यहाँ पर अरेंजमेंट है। कमल के बीच में बरसाना है और उसके चारों ओर 8 गांव हैं सखियों के, और कृष्ण के और राधा रानी के प्रेम की वजह से वो यहीं बस गए। फिर 7वें भाई हैं सुभानु, और पत्नी का नाम है मालिका देवी और उनकी कन्या का नाम है रंग देवी। इनका गांव कौन सा है, दभारा। तो मैंने आपको बताया ना रत्नकुंड जहां पर राधा रानी ने प्रकट किया। और आखिरी जो भाई है उनका नाम है रति भानु, इनका विवाह हुआ बुद्धिमती से, और इनकी कन्या का नाम क्या है?
सुदेवी,
जो आपके ग्रुप का नाम है हरि बोल। उनका गांव कौन सा है? सुनहरा स्वर्णबन, ये उनका गांव है। अभी इनकी बात निकली है, वो किताब निकालो मोटी वाली, इनका आपको बताते हैं, क्योंकि आप लोग अभी इनका नाम लेके सब जगह डोल रहे हैं ब्रज में, और उनका ही पता नहीं आपको तो कैसे चलेगा, इसलिए अभी उनको बताना जरूरी है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, इनका स्वर्णपुर बन है, पद्म पुराण के अनुसार ही वर्णन है। रति भानु उनके पिताजी का नाम है, बुद्धिमती माता जी का नाम है। इनका जन्म रंगदेवी के साथ ही उसी दिन हुआ था, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन। हाँ देखो, एक मिनट स्कूल उल्टा करो। हाँ, भाद्रपद शुक्ल तृतीया से लेकर पूर्णिमा तक सभी सखियों का जन्म होता है। तृतीया को भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुंग विद्या का जन्म हुआ है, सबसे सीनियर है वो। फिर षष्ठी को ललिता देवी का जन्म हुआ है। फिर अष्टमी को तीन देवियों का जन्म हुआ है, राधा अष्टमी यानी राधा रानी, विशाखा देवी और चंपकलता, इन सबका एक ही दिन जन्म हुआ है। फिर दशमी के दिन चित्रा देवी का जन्म हुआ है, और एकादशी के दिन इंदुलेखा का जन्म हुआ है, और पूर्णिमा के दिन रंग देवी और सुदेवी का जन्म हुआ है। इनका रंग जो है, हर एक गोपी का एक एक अपना अपना रंग होता है। चित्रा देवी का रंग जो है वो कुमकुम जैसा है, वेरी ब्यूटीफुल कुमकुम, शाइनिंग ब्राइट। इनका रंग जो है वो केशर जैसा है, उसको कहते हैं किंजल कवत, किंजल यानी केशर, वो उस तरह से उनका रंग होता है। ये इनका भी हर एक गोपी का एक एक कुंज होता है, हर एक गोपी का एक प्राइवेट कुंज होता है, और वृंदा देवी के आज्ञा के अनुसार उनके उनके कुंज में लीला होती है। ऐसे लिखा गया है कि कृष्ण भगवान ने बड़े प्रेम से, सॉरी राधा रानी ने बड़े प्रेम से कृष्ण का विवाह हर एक अष्ट सखी के साथ, मतलब अष्ट सखियों में से हर एक सखी के साथ में उनके उनके गांव में किया है। जैसे ऊंचा ग्राम में भगवान का विवाह ललिता देवी के साथ राधा रानी ने मनाया है, वो भी त्रयोदशी के दिन मनाया है, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। जब यहाँ पर मटकी लीला होती है तब ऊंचा ग्राम में विवाह ब्यावला होता है, सब गांव आता है वहां पर महाप्रसाद लेने के लिए, और शादी करते हैं ललिता की भगवान के साथ में। इनका कुंज का रंग जो है वो हरित है, हरे रंग का कुंज है इनका। आप बोलेंगे सब कुंज तो हरे रंग के होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कुंज मेघ वर्ण के होते हैं, कुछ कुंज लाल वर्ण के होते हैं, मतलब लाल रंग उसमें प्रधान होता है, फूलों का, पत्तों का, डालियों का, वेलियों का जो है। इफ यू सी इट इमीडिएटली यू अंडरस्टैंड कि ये लाल प्रधान रंग है यहाँ पर। और कहीं जाएंगे किसी के वर्ण कुंज में तो मेघ वर्ण यानी कि ब्लूइश डार्क ब्लू आपको प्रधान मिलेगा, किसी का वर्ण जो है वो स्वर्ण वर्ण का कुंज है उनका, वेरी ब्राइट शाइनिंग लाइक सनलाइट। इनका प्रिय वाद्य जो है सितार है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी सेवा क्या है। जब राधा रानी और कृष्ण भगवान का श्रृंगार होता है तो इनको ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार क्या अनुकूल इत्र है वो लगाने की इनकी सेवा है। अब इत्र कई प्रकार का होता है, कई फूलों से कई प्रकार का इत्र निकलता है, कई सीजन में अलग अलग फूल खिलते हैं, उनका अलग अलग इत्र होता है, उसका अलग अलग गुण भी होता है। कोई इत्र जो है वो गर्मी पैदा करता है, कोई ठंडक पैदा करता है, कोई अलग अलग प्रकार का भाव पैदा करता है। उसी से आजकल वो एरोमाथेरेपी निकला हुआ है, लेकिन एरोमाथेरेपी बहुत सूक्ष्म रूप से और बहुत श्रेष्ठ रूप से उस समय उपस्थित थी। तो उनको सुगंधित इत्र लगाना उनके श्री अंग में ये उनकी प्रधान सेवा है। हर एक अष्ट सखी जो है, इनका और भी नाम है, परम श्रेष्ठ सखी कहते हैं उनको। तो हर एक अष्ट सखी का तीन तीन सखियां उनकी मंजरियां उनके सेवा में होती है, और हर एक मंजरी जो हर एक सखी के सेवा में होती है उनके पास 1 करोड़ सखियां सेवा में रहती, मंजरी के सेवा में, गोपियां दासी के रूप में सेवा करती है। तो एक जो अष्ट सखी में से गोपी है एक, उसके पास 3-3 करोड़ गोपियां हैं सेवा करने के लिए। तो इनकी प्रधान सखियां हैं तारका मंजरी, सुधामुखी मंजरी और पद्मा मंजरी। और इनकी आकृति जो है वो रंग देवी से मिलती जुलती है, बिकॉज उनका जन्म एक ही समय हुआ है। कई बार दूर से बसी भ्रांति होती है कि मानो रंग देवी जी आ रही, जब ये आ रही। और श्री राधा रानी की वेणी की रचना विशेष रूप से ये करती है। और एक सखी है गोलोक में, उनका नाम है पलिंद्री। पलिंद्री में भगवान राधा रानी के बालों को संवारती है, शी इज लाइक हेयर ड्रेसर। लेकिन वो जो पलिंद्री है वो सुदेवी के निर्देश के अंदर, गाइडेंस के अंदर राधा रानी के बाल सवार थी। सुदेवी जो है, अभी आप जानते हैं ब्रज में बहुत तोता है, यू नो, राधा रानी का भी तोता है लीलाशु का विशेष, और बिंदा देवी जो है उनके बहुत सारे तोता हैं, करोड़ों तोता हैं, 1000 तोता प्रधान है, और 1000 तोता के अंदर जैसे गोपियों के असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट होते गोपियां, वैसे ये तोताओं के भी असिस्टेंट तोता होते हैं। हाँ, सब लोग सुन रहे हैं ना। हाँ, तो ये सब जगह ब्रज में जाकर एज अ जर्नलिस्ट दे गो अराउंड एंड दे गिव ऑल इन्फॉर्मेशन टू वृंदा देवी कि कहाँ पहाँ क्या हो रहा है, कौन से फूल खिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहाँ पर गाड़ी उल्टी हो गई, कहाँ पर रेप हो गया, कहाँ पर लूटेरा लूट गया, पॉकेट मार दिया, वो सब नहीं। कौन से फूल खिले हुए हैं, कौन सा प्रधान रंग है, कौन सी फूलों की खुशबू हवा से बह रही है, ऐसा डिवाइन न्यूज, यू नो, नॉट लाइक ऑर्डिनरी फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज इन न्यूज़पेपर। सब खबर लाके फिर वृंदा देवी को देते हैं, और फिर वृंदा देवी उस खबर को प्रोसेस करती हैं और फिर तय करती हैं कि ये सब सुंदर वातावरण में से किस वातावरण में आज लीला करनी है, किस जगह पर राधा और कृष्ण को मिलाना है। फिर वो तय करने के बाद में फिर उसकी योजना बनाती है पूरी। तो एनीवेज, ये तोता भी जो है ना, इनको ट्रेनिंग देने में सुदेवी बहुत एक्सपर्ट है। पॉइंट ये था मेरा कि जितने भी तोता जो है ना, समझो फॉर एग्जांपल जिसका भाव समझो तोता का है, तो वो भगवान की सेवा में तोता के रूप में शामिल हो जाएगा, तो नया नया तोता होगा ना वो, तो तोते को और मैना को शिक्षा देनी होती है, ट्रेनिंग हाउ टू सर्व इन द डिवाइन पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड। तो वो शिक्षा देने के लिए सुदेवी बहुत निपुण है। और मुहूर्त निकालने का शास्त्र होता है ना, शकुन शास्त्र बोलते हैं उसको, हाउ टू फाइंड बेस्ट टाइम फॉर राधा रानी एंड टू कृष्णा टू मीट, कौन सी घड़ी, कितना लव मात्र, वो सब बहुत सिस्टमेटिक काम होता है, ऐसे स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है। इट्स वेरी डिवाइन अरेंजमेंट ऑफ वृंदा देवी, ललिता, विशाखा, वेरी ब्यूटिफुली, वेरी मेटिकुलसली, वेरी इलेबोरेटली दे अरेंज एवरीथिंग। सो मुहूर्त भी होता है, तो ये जो मुहूर्त शास्त्र है इसमें ये पूर्ण पंडिता है। और इनका एक विशेष स्पेशलिटी है, पंछियों की भाषा ये बहुत अच्छी तरह जानती है। ब्रज में कितने अच्छे अच्छे पंछी हैं, बताओ कौन से पंछी हैं। एक तो मोर है, तोता है, कोयल है, हाँ फिर कौन है बताओ, हाँ चक्रवाक है, और हंस है, और राजहंस, और कौन है बताओ, चिड़िया भी है, हाँ हर प्रकार के पक्षी यहाँ पर भगवान की आनंद को बढ़ाने के लिए अपनी अपनी ध्वनि जोड़ देते हैं। और भगवान भी जो बाल लीला करते हैं तो सभी ग्वाल बाल इन पक्षियों की आवाज निकाल कर उनको रिझाते हैं, और भगवान भी क्या करते हैं, लगता है कि वो सबको रिझा रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो हर एक पंछी के साथ में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। विथ एवरी ब्लेड ऑफ ग्रास, विथ एवरी क्रीपर, विथ एवरी ट्री, विथ एवरी एनिमल, विथ एवरी बर्ड, एवरी लता एंड बेली ऑल्सो, सबके साथ ही इज रिस्पॉन्डिंग 1-to-1। हाउ एक्सपर्ट द लॉर्ड इज। हाँ, तो इन पंछियों की भाषा समझने में ये बहुत निपुण है। आपने वो दीनबंधु प्रभु से कथा सुनी होगी, भांडिर वट के वृक्ष पर दो तोता और मैना बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, महाप्रभु चैतन्य सुन रहे हैं। ब्यूटीफुल पास्ट टाइम व्हेन चैतन्य महाप्रभु केम टू वृंदावन। हाँ, चैतन्य महाप्रभु केम टू वृंदावन, तोता और मैना पेड़ पर बैठे मिले, और तोता जो है वो कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं कि हमारे कृष्ण कितने सुंदर हैं, और मैना फिर राधा रानी का चर्चा कर रही है, फिर तोता कुछ बोलता है कृष्ण के बारे में, फिर मैना कुछ राधा रानी के बारे में बोलती है। और ऐसा करने के बाद में राधा रानी की बात करने वाले मैना जो है वो बहस में जीत जाती है, और फिर वो ऐसे कहा है कि वो पेड़ पर बैठ के बात कर रहे थे, जैसे महाप्रभु चैतन्य आए तो उनकी उंगली पे आके बैठे वो दोनों, और उंगली पर बैठकर बहस कर रहे हैं और महाप्रभु जी सुन रहे हैं। फिर बहस समाप्त होता है तो पंछी उड़ जाते हैं। महाप्रभु स्वयं राधा रानी है तो उनको सबकी भाषा समझते हैं। हाँ, स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में आए। तो ऐसे पक्षियों की भाषा में सुदेवी बहुत निपुण है। चंद्र उदय, बादल और पुष्प, इन तीन विषय में हर चीज माइन्यूटली सुदेवी नोज एंड हाउ टू यूटिलाइज दैट इन कृष्णा सर्विस। यहाँ पर कोई ज्ञान होता है ना, ऐसे ही बेकार का ज्ञान पीएचडी का नहीं होता है। हमारा यहाँ पर कैसे होता है पीएचडी, कोई तो भी एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट ढूंढ के निकालते हैं उस पर रिसर्च करके अगर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं जिसका दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहता है, फिर उनको पीएचडी मिल जाती है जो कहीं भी नहीं, कुछ अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई भी यूज नहीं होता है। पीपल हैव टू आस्क देम व्हाट आर यू पीएचडी इन, देन दे विल एक्सप्लेन सम कॉम्प्लिकेटेड मैटर, बोलते हैं बस ठीक है वो आप ही इसमें खुश रहो, तो समझ में नहीं आता है, कोई वैल्यू भी नहीं उसका। दिव्य लीला में प्रतिपक्षी के भाव, उनकी चेष्टा आदि जानने के लिए जो गुप्तचर सखियां घूमती रहती है, हाँ ये भाव उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लग दो अभी अंदर। ये भगवान की लीला जो है ना, इसमें स्पाइंग भी होता है। हाँ अपना कौन सा है इंडिया का सीबीआई, मतलब वो जाके गुप्त रूप में सब पता करते हैं। जैसे यहाँ पर एक ललिता कुंड है नंदगांव में, नंदगांव में ललिता कुंड क्यों है? वो बरसाने की एम्बेसी है वहां पर, नंदगांव में क्या क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, उसका पूरा वर्णन यहाँ पर पहुंचता है रिपोर्ट। वैसे ये जो गुप्तचर है यहाँ के, वो सारे गुप्तचर सुदेवी के अंडर हैं, सारी खबर जो है छुपी हुई खबर, गुप्त खबर यहाँ की सुदेवी के पास पहुंचती है, फिर सुदेवी उनको ललिता देवी को इन्फॉर्म करते हैं, उसके आगे सब आयोजन होता है उसका। हरे कृष्णा, सुदेवी महारानी की जय हो। सोचा आप लोग सुदेवी का नाम लेके घूम रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। हाँ बस में जाके थोड़ा क्विज करना, उसमें से थोड़ा याद करना। हाँ हरे कृष्णा। अभी हम लोग मान मंदिर में बैठे हुए हैं, तो मान मंदिर जो है ऐसे कहते हैं कि बहुत ही उत्कट गढ़ है ये। प्रेम के अंदर कैसा होता है, कई प्रकार के प्रेम के भाव होते हैं, रति प्रेम स्नेह मान प्रणय भाव प्रेम, ऐसे 8 प्रकार के प्रेम के प्रकार होते हैं। उसमें मान जरा विचित्र होता है। मान मतलब दुनियादारी में हम समझ सकते हैं कि वो क्रोध, जिसको गुस्सा कह सकते हैं, लेकिन मान ये दिव्य भावना है। मान केवल कृष्ण के आनंद के लिए किया जाता है, तो बहुत ही अद्भुत रहस्यमय और गुप्त लीलाएं यहाँ पर होती है ये मानगढ़ पे, इसलिए इसको मानगढ़ कहा गया है। सबसे पहले हम उनको हाथ जोड़ के सब लोग प्रणाम करेंगे। यहाँ पर देव गंधर्व भी निवास करते हैं, उनको भी ये मान मंदिर सुख देता है। सब लोग बोलेंगे हाथ जोड़ के, देव गंधर्व रम्याय,
देव गंधर्व रम्याय,
राधा मान विधायिने,
राधा मान विधायिने,
मान मंदिर संज्ञाना,
मान मंदिर संज्ञाना,
नमस्ते रत्न भूमये,
नमस्ते रत्न भूमये।
तो राधा रानी केवल कृष्ण का प्रेम और कृष्ण की रति बढ़ाने के लिए मान लीला करती हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कृष्ण भगवान ने जो मुरली बजाना सीखा है वो राधा रानी से सीखा है, जमुना किनारे बैठकर नाचना भी उनके ही पास से सीखा है। लेकिन कृष्ण भगवान बहुत चतुर हैं, वो क्या करते हैं, राधा रानी के क्लास में, क्लास लंबा होना चाहिए, उसका समय लंबा लंबा होना चाहिए, इसलिए वो पढ़ने के बाद भी गलत पैर डालते हैं, है ना। अभी समझो अभी इतने कुशल है वो, सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए थे तो एकदम ना यहाँ वहाँ देखने के पहले सब कुछ सीख गए, वो 18 विद्या सब सीख गए, एकदम एक्सपर्ट हो गए। तो वो तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के समझने के बाद भी गलत कदम डाल रहे हैं डांस क्लास में। तो राधा रानी बड़ी भूली है, वो तो दोबारा सिखाती हैं, फिर गलत डालते हैं, फिर 3 बार सिखाती हैं, फिर 4 बार सिखाती है, फिर 5 बार सिखाती है, कुछ देर बाद समझ में आता है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, फिर वो रूठ जाती है, ये एक कारण हुआ। फिर कभी रास में लेट आते हैं तो रूठ जाती हैं, एक बार रास में लेट आए रूठ गई तो जमुना पार जाके रोई तो पूरा कुंड बन गया उसका, क्या नाम उसका, मान सरोवर। रास की कहानी है ये। ऐसे कई कई बातें हैं, भैंस में रूठ जाती है कभी। तो एक बार भगवान ने उनको बोला कि आप तो कितनी सुंदर हो, आपका चेहरा चंद्र जैसा है। तो कृष्ण को उम्मीद थी कि बड़ी खुश हो जाएंगी इतनी स्तुति करने के बाद, लेकिन तुरंत रूठ गई वो। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे क्यों रूठ गए, चंद्र की उपमा दी आपके चेहरे को। वो कहते कि हमारे चेहरे में कुछ दाग है क्या, देखो चंद्रमा में कितने दाग हैं, आपको कहीं दाग नजर आते हमारे चेहरे में, तो क्यों हमको चंद्रमा उपमा दी आपने। तो चंद्रमा को तो ग्रहण लगता है, हमारे सौंदर्य को कभी ग्रहण लगता नहीं है, कभी भी ग्रहण नहीं लगता है। चंद्रमा का क्षय होता है, हर 15 दिन के अंदर वो धीरे 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 अदृश्य हो जाती है, उनका सौंदर्य खत्म हो जाता है, और हमारे सौंदर्य को कहीं कभी भी क्षय होता नहीं है, हमेशा हर समय हर क्षण वृद्धि होती रहती है। और चंद्रमा जो है परप्रकाशित है, सूरज के द्वारा परावर्तित प्रकाश प्राप्त करके दुनिया को प्रकाश देती है, हमारा सौंदर्य जो है वो स्वयं प्रकाशित है। चंद्रमा के पीछे कई लोग लगे हुए हैं, वो चेष्ट नहीं है, शी इज नॉट सती, हम परम सती हैं, वो केवल आपके लिए समर्पित हैं। चलो कोई बात नहीं, ये सब कारण भी ठीक है, लेकिन एक कारण ऐसा है कि जिसके लिए हम आपको माफ नहीं कर सकते, ये सारे कारण हम बाय द वे उसको दफा कर सकते हैं, लेकिन आपने हमारी जो राइवल गोपी हैं चंद्रावली, उसके नाम का आधा जो चंद्र है उससे हमारी तुलना की है, इसलिए हम आपसे नहीं बात करेंगे, चलो चले जाओ, आपसे बात नहीं करेंगे। फिर वो निकल जाती है, फिर कृष्ण बड़े दुखी हो जाते हैं, बहुत मनाते हैं, मैंने बताया ना आपको, पहले हाथ जोड़ते हैं, पहले झुक जाते हैं, घुटने पे आ जाते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं, फिर रोते हैं, फिर दंडवत प्रणाम करते हैं, अपना शीश मोर मुकुट उतार के उनके चरणों में रखते हैं, फिर भी नहीं मानती है, फिर रोते हैं, फिर अपने अश्रुओं से इनके पैर धोते हैं, चरण कमल पर अश्रु सिंचन करते हैं, फिर भी नहीं मानती है, फिर इतने रोते हैं, फिर इस रज में लोटपोट हो जाते हैं, ऐसी रज है दुनिया भर में, सब लोग वृंदावन में कृष्ण भगवान के चरणों के रज चाहते हैं, वही कृष्ण भगवान जिनकी रज सबको वांछनीय है वो यहां पर आकर रोटपोट हो जाते हैं। यू कैन इमेजिन, सुप्रीम लॉर्ड इज रोलिंग इन द डस्ट अंडर द फीट ऑफ राधा रानी जस्ट टू प्लीज हर, एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी करने को तैयार है, फिर भी वो नहीं मान रही है, तो फिर ललिता देवी का आश्रय लेते हैं, ललिता जी कुछ करो, इतना सब मैंने किया कुछ नहीं हुआ, ढाबा बनाओ। ललिता जी बनाने जाती हैं तो दो कदम और चढ़ जाती है, फिर वापस आती है, बोलते नहीं मान रही है, कृष्ण भगवान बोलते जाओ दोबारा जाओ, तो और दो कदम ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे करते करते ललिता कहते मैं हार गई अभी ऊपर नीचे जाकर, आप यहां से भेज रहे हो वहां नहीं मान रही है, तो पूरे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है, कृष्ण भगवान का हाथ लेकर उनके हाथ से मिलाना चाहती है, वो उधर देखती है, फिर कृष्ण भगवान को इधर लेके आती है, उधर से हाथ मिलना चाहते हैं तो वो उधर देखती है, हर प्रकार से कोशिश करती है, कृष्ण भगवान रो रहे हैं, अश्रु बहा रहे हैं, नदियां बह रही है, और ये कोशिश कर रही है उनको मनाने की, लेकिन मन नहीं रहे। तो कृष्ण कहते हैं अभी जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा, अभी तो मर जाना ही अच्छा है, राधा रानी नहीं मान रही है, क्या करें। ये कई प्रकार की मान लीलाएं हैं, एक प्रकार की मान लीला में ललिता देवी आके फिर कहती है अभी आप मुरली बजाओ, तो फिर मुरली बजाते हैं तो फिर वो सब भूल जाती हैं, क्योंकि मुरली ऐसी वस्तु है जब बजती है तो तारे आकाश में रुक जाते हैं, नदियां बहना बंद हो जाती हैं और उल्टा बहने लगते हैं भंवरे के अंदर, चंद्रमा सूर्यमा अपनी कक्षा में रुक जाते हैं, पंछी जो है पैर अपने पत्ते झड़ जाते हैं पंछियों के पैरों के, ऐसे कई प्रकार के परिणाम होते हैं, पत्थर पिघलने लगते हैं, गाय भाग के आती है, दूध पीना छोड़ देते हैं बछड़े, ऐसे अद्भुत अद्भुत परिणाम मुरली के उदय होते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि कितने भी प्रयास करने के बाद में राधा रानी नहीं मानती हैं तो मुरली की धुन सुनते ही उनका मान जो है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, ललिता देवी ने कुछ आके कान में बोला ठाकुर जी के, वो तुरंत ठाकुर जी निकल गए वहां से, तो कुछ समझा नहीं किसी को क्या होने वाला है, ठाकुर जी निकल गए वहां से। कुछ देर के बाद वहां एक मोर आया, बहुत सुंदर मोर, और नाचने लगा, मोर आते ही तुरंत बादल आ गए, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, कुछ कुछ छींटे गिरने लगे, तो मोर को उत्साह आया, वो नाचने लगा। ललिता के राधा रानी देखो देखो इतना सुंदर मोर आया, तो देखने को तैयार नहीं है, रूठी हुई है, फिर उसको मनाते हैं देखो देखो कम से कम मोर को देखो, वो तो चला गया काला कलूटा चला गया, अभी आप मोर को देखो, तो मोर को देखते हैं तो मोर और सुंदर नृत्य करने लगता है उनको देखने के बाद। जैसे ही मोर नृत्य करता है राधा रानी देखने लगती है बड़े उत्सुकता से, जैसे देखती है उत्सुकता से उनको पता चलता नहीं कि मान कब निकल गया उनका, वो बहुत आनंद लेती है, मोर और अच्छा नृत्य करता है और अच्छा नृत्य करता है। जब मोर एकदम उत्कट स्थिति में आता है नृत्य के, तो राधा रानी उतरती है उसको ज्वाइन कर लेती है और दोनों मिलकर नृत्य करते हैं, वो मोरनी बन जाती है, वो मोर के साथ में नृत्य करने लगती है, बहुत देर कर झूम झूम कर अलग अलग पोज में नृत्य करते हैं। लास्ट में जब इनका बायां हाथ इनका दाहिना हाथ ऐसा मिलता है तो समझ में आता है कि ये तो कृष्ण है, तब तक उनका मान समाप्त हो जाता है। इस तरह से ये मोर लीला यहाँ पर होती है, भगवान मोर बनकर नाचते हैं और राधा रानी को रिझाते हैं, और मोर लीला एक ही नहीं है, अनंत मोर लीला होती है। कभी ये दोनों बैठे हैं ऐसे मान मंदिर में खड़े हैं, हवा चल रही है, राधा रानी का चुंदरी हवा में ऐसा उड़ रहा है, हवा में से सुगंध आ रही है, कहाँ कहाँ से फूके सर सुगंधी फूलों की खुशबू लेकर हवा आ रही है, ठंडे ठंडे बाष्प को लेकर आ रही है, इनके त्वचा को ठंडक और सुगंध दे रही है। बादल से ऐसी मधुर और हल्की हल्की गर्जना हो रही है, बहुत स्वीट। तो डरने लगे उससे, लेकिन कान को बड़ा आनंद आ गया। फिर बादल कैसे थोड़े थोड़े बूंद गिराते हैं, वो देखकर सब मोर यहां से भाग भाग के आते हैं। तो राधा रानी कृष्ण को इशारा करती है और कृष्ण मुरली निकालते हैं और मुरली बजाते हैं। फिर सब गोपियां भी इशारा करके तुरंत बुला लेते राधा रानी, और वो अपने कंगन जो है वो बजाना आरंभ करते हैं। और गोपियां आती हैं तो अपने पायलों को बजाना आरंभ कर देती हैं। तो कंगन, पायल और मुरली, इससे बहुत दिव्य ध्वनि मेलेडी तैयार होता है, और वो मेलेडी सुनकर सारे मोर नाचने लगते हैं। बहुत सुंदर नृत्य होता है, वो भी एक मोर लीला है। और एक लीला में राधा रानी कृष्ण को कहती है, आज तो मोर बन के हमको नृत्य बन के नृत्य करके दिखाओ। तो सब सखियां बैठती हैं, अकेले कृष्ण उनको मोर बनकर नृत्य दिखाते हैं। तो सभी कभी सखियां डिमांड करती हैं कि आप दोनों आज मोर मोरनी बन जाओ। तो उनकी इच्छा से सब लोग राधा रानी और कृष्ण भगवान मोर बनकर नाचते हैं, और कभी सब सखियां और सभी मिलकर मोर मोरनी बनकर नाच करते हैं। ऐसे यहाँ पर अनंत मोर लीला है, ऐसा नहीं कि एक ही लीला हुई है। मोर कुटी आपके सामने है, वहां पर ये अनंत मोर लीला चलती रहती है। कभी कभी मान में भी उसका उपयोग होता है, मान को रिझाने के लिए। तो ये सब मोर कुटी में हुआ है, ये मोर कुटी की लीला है, लेकिन भगवान मान मंदिर से जुड़ी हुई है लीला। और जो सूरदास जी बहुत मशहूर संत हैं, उनके भजन में ये मान लीला का बड़ा विस्तार में वर्णन दिया है। तो ये मोर कुटी में एक संत रहा करते थे, अभी अभी की बात 200 साल के पहले की। वो उनका एक सिंह शिष्य था, he had a disciple who was lion, और वो गुरु के लिए गले में थैली लटका कर मानपुर में जाकर भिक्षा करता था। नॉक करके दरवाजा खोलते थे तो रास्ता में दरवाजे में सिंह खड़ा है, भगवती भिक्षान देही। तो रोटी डालते थे उनको, और फिर वो गांव से रोटी इकट्ठा करके अपने साधुओं के पास गुरु के आवास आके उनको रोटी देते थे। तो गुरु जी रोटी पाते थे और बच्चे भी रोटी सिंह पाता था। हाँ, संतों का कैसा होता है, संत लोग क्या नहीं कर सकते, जो भगवान भी नहीं कर सकते वो संत कर सकते। उसको भगवान भी माफ नहीं करते, संत उसको माफ कर देते। संतों को भगवान ने जानबूझ के ऐसा रखा है, वो इतने उनसे प्रेम करते हैं कि अपना सर्वस्व उस संत पर लुटा देते हैं। और संत के इशारे पर भगवान क्या नहीं करते हैं। हाँ, कितना गर्ग संहिता में कितनी कहानियां हैं कि संतों ने कह दिया कि जाओ द्वापर में तुम्हारा भगवान उद्धार कर देंगे। हाँ, बकासुर को वो था ना प्रमिलासुर, वो हयग्रीव का पुत्र था उत्कल, प्रमेश्वर ने उत्कल तो उत्कल को श्राप दे दिया कि तुम बगुला बन जाओ। तो उसने माफ़ी मांगा, तो फिर माफ़ी मांगने के बाद में गिरगिट आया, तो संत ने बोला कोई बात नहीं, जब कृष्ण भगवान आएंगे तो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। हाँ, तो आया इधर खदीर वन में, सभी देवताओं ने उसके साथ युद्ध किया क्योंकि भगवान को उसने निगल लिया था अपने पेट में। लेकिन इतने बड़े देवता यमराज, ब्रह्मदेव, महादेव, शिवजी, देवी, भद्रकाली, वायु, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब लोग अपना अस्त्र चलाते हैं उसके ऊपर, कुछ नहीं होता है उसको। क्यों? क्योंकि संत ने कहा है ना कि भगवान मारेंगे। सारे देवता लोग युद्ध कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं, आकाश में खदेड़ रहा है, सबको भगा रहा है वो। फिर कृष्ण उसके बाद में मुंह से बाहर निकलते हैं, फिर उसको मारते हैं। अभी कृष्ण कितने ऑब्लाइज्ड हैं, क्योंकि किसी जमाने में जाजली मुनि ने कहा था कि तुम्हारा उद्धार कृष्ण करेंगे, प्रमिला सर को कहा था कि तुम्हारा उद्धार कृष्ण करेंगे, तो वो प्रलंबासुर बन के आया, फिर उसको बलराम जी ने मारा उसको। इतने भगवान अपने भक्त के आदेश के अधीन होते हैं। तो ये बात कहाँ से निकली, संत। संत ने फिर भगवान राधा रानी ने उनको स्वप्न दिया, और वो संत अंधे थे। अंधे संत को स्वप्न में राधा रानी ने पूरी मोर लीला दिखाई, पूरा दर्शन कराया मोर लीला का। और यहाँ पर बात समाप्त नहीं होती है। हाँ, मजे कर लिए, हाँ देख लिया, आनंद लिया, अभी उसको पेंट करो, ऐसे बोलते हो। तो कहते मैं तो अंधा हूँ, तो कोई चिंता मत करो, मैं जैसे कहती हूँ वैसे करते जाओ। स्वप्न में उसको निर्देश करके स्वप्न में ही उसके हाथ से वास्तव में वो पेंटिंग बनाते हैं। उसमें राधा रानी और कृष्ण जो है वो मोर बनकर ऐसे मिले हुए हैं, जैसे मानो एक ही पंख लगता है लेकिन है दो, और पूरे ऐसे मोर पंख जो है बिखरे हुए हैं, बीच में राधा कृष्ण विराजमान है, बड़े एकदम सुंदर पोज में खड़े हैं। तो उसने वो चित्रपट बनाया अंधे ने, तो आज मोरकुटी में वही चित्रपट का विग्रह के रूप में सेवा की जाती है. ऑन द ऑल्टर दैट पिक्चर इज देयर विच वॉज ड्रॉन बाय द ओल्ड ब्लाइंड सेंट. तो अगर आपको समय है तो नीचे उतरेंगे तो आप ऊपर वापस चढ़ सकते हैं. समय बहुत कम है, कोई बात नहीं. तो अभी आगे की कथा जो है यहाँ की, नीचे गहवर कुंड है. वो गहवर कुंड जो है वो ब्रह्मा की नाभि है. वो राधा रानी का बहुत सबसे बहुत प्रिय स्थान है स्नान करने के लिए. अपने केवल गिने चुने 64 सखियों के साथ में वो वहाँ पर स्नान करती है रोज. और जब वो स्नान करती हैं तो मोरकुटी से बाल बाल उनको चुराने के लिए लड्डू फेंकते हैं उनके ऊपर, डिस्टर्ब करने के लिए. तो फिर आगे जाके जल विहार कुंड, मैंने आपको पहले ही बताया कि गौरी ने यहाँ पर महादेव जी का श्रृंगार किया था. आगे दोहनी कुंड है, वहाँ पर विश्वानु महाराज अपने लाखों गायों का दूध निकालते थे. बहुत सुंदर सुंदर स्नान है. तो अभी अभी मान मंदिर में एक संत का शरीर समाप्त हो गया, वो है मदन मोहन जी बिजवासी. आपने पहले दिन महाराज से कहानी सुनी ना उसके बारे में, उनके बारे में. मदन मोहन जी बिजवासी ऐसे पेशे से, ये जो लट्ठा है ना, ये इनका उनका व्यवसाय था. आप लोग सब जो सोचते होंगे कि ये मैं लट्ठ लेके क्यों घूमता हूँ, क्योंकि वो लट्ठ जो है ये 2001 साल में उन्होंने मुझे दिया था, इसलिए मैं उसको लेके घूमता हूँ उनकी याद में. तो पेशे से उनका ये था पेशा, बांस का पारिवारिक. और वो बड़े प्रसिद्ध गायक थे ब्रज के. 20 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया था ऑफिशियली, मतलब प्रोफेशनली. और आकाशवाणी में हर रोज शाम को 6:30 से 7:30 तक 40 साल तक केवल उन्हीं के गाए हुए ब्रज के गीत आकाशवाणी से ब्रॉडकास्ट होते थे. आई हैव हर्ड इट सो मेनी इयर्स बैक. ओनली ही वुड सिंग एवरीडे. 60 ईयर्स में रिटायर हो गए वो. उनके पत्नी को कैंसर हुआ था, उसमें भी उनका देहांत हो गया. महाराज जी और हम उनको मिलने गए थे उस समय जब उनकी पत्नी अंतिम स्थिति में थी. और उसके बाद में वो परिवार बाहर छोड़ के मान मंदिर में आके बस गए बाबा के पास. इतना सुंदर गाते थे, इतना सुंदर गाते थे. और गायन के आगे जाकर जो उनका भाव था प्रेम और भक्ति का, वो सबसे श्रेष्ठ था. गायन कला तो बहुत लोगों के पास में है, लेकिन वो सब पैसा कमाने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, मशहूर होने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपना अपना धन बटोरने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं. लेकिन गायन कला जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है, वो श्री जी और कृष्ण को प्यारा हो जाता है. तो ऐसे इनकी कला जो थी वो पूर्णतः केवल भजनों के लिए. रेडियो पर भी भजनों के अलावा कुछ नहीं गाते थे, वो भजनों के अलावा कुछ नहीं गाते थे. और पूरा संगीत उनका जो कला था वो भगवान के लिए समर्पित था. इतना बढ़िया बाजा बजाते थे. तो हम लोग उनको पूछते थे कि आपको हमको भी सिखाओ, तो बोलते मुझे कुछ नहीं आता है. क्योंकि उनको जो ज्ञान था संगीत का और इंस्ट्रूमेंट्स का, वो स्वयं स्फूर्त था, जन्म से ही उनको ज्ञान था. वास्तव में ऐसा नहीं कि वो नम्रता से कहते कि हमको नहीं आता है, ऐसा नहीं. उनको वास्तव में सारेगामा पर कुछ पता नहीं था. उनका हाथ केवल चलता था अपने आप ही और उसमें धुन निकलती थी, ये हमने स्वयं देखा है. और हमारा ये परम सौभाग्य ऐसा रहा है कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में उनके दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था. वी ऑलवेज कॉल इट एज अ मोस्ट प्रेशियस आई दैट वी ऑपरेटेड इन आवर हॉस्पिटल. यहाँ से उनको हम लोग वहाँ ले गए थे. हमारे हर आई कैंप में यज्ञ के समय वो आकर वहाँ पर गाया करते थे. कई लोगों ने देखा भी होगा जो आई कैंप में आते थे, छोटे से कद के, सफ़ेद बाल के, बहुत सुंदर प्रेमी, बहुत नम्र स्वभाव के. और उस बहाने वो मेरे घर पे कई हफ्तों तक और कई बार रह चुके हैं. तो जब रहते थे तो दिन भर गाया करते थे, दिन भर तौलिया पहन कर बैठते थे. और जब उनको भाव आता था तो आके बैठो को सुनाता हूँ कुछ, तो सुनाते थे बहुत मधुर. बहुत बार गाते गाते रोते थे, एंड में ऐसे एकदम बंद हो जाते थे, उनका गला भर आता था. क्योंकि वो गाते थे वो कोर कला के रूप में नहीं गाते थे, वो श्री कृष्ण के लिए गाते थे. एक बार मुझे अभी भी याद है कि वो हमारे घर पे आए थे और वहाँ से हम लोग राधा गोपीनाथ जी मंदिर में गए थे. शयन का समय था तो हमने कहा कि आप इनको गाने दीजिए, तो वो गाने बैठ गए. वो बहुत देर गाया उन्होंने और बाद में बोला कि ठाकुर जी की बंसी हिल रही थी जब मैं गा रहा था. तो किसी को समझ में नहीं आया. तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं और मेरे मित्र, कि जब ये गाते हैं तो उनको ऑडियंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए गाते हैं. जनता को रिझाने के लिए, जनते को मनोरंजन के लिए नहीं गाते हैं। उनका गाना जो होता है वो आत्मा से निकलता है और परमात्मा तक पहुंचता है, दैट इज देयर पर्पस। हम जब गाते हैं तो लोगों पर इंप्रेशन डालना चाहते हैं कि हाउ वंडरफुल सिंगर आई एम। हम जब बोलते हैं तो हमको चाहते हैं कि लोग इम्प्रेस हो जाएं अबाउट अस, बिकॉज अवर ऑल एक्टिविटीज आर मेड फॉर सेल्फ। संत जो होते हैं उनकी हर एक गतिविधि जो है वो भगवान के लिए होती है, उनके आनंद के लिए होती है। उससे खुद को आनंद मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें कोई मतलब नहीं होता है, केवल उनके लिए सब कुछ कार्य करते हैं। और यही मदन मोहन जी जब हमारे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज फिलाडेल्फिया में आखिरी अवस्था में थे, तो अपने यूरोप अमेरिका टूर में जाते थे वो हर समय, यहाँ के पंडित जी और मदन मोहन जी और गिरधर सब जाते थे, तो अचानक वो फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पे उतर गए और हमारे महाराज जी उनको लेने गए। और भक्ति तीर्थ महाराज को इच्छा थी ब्रज में आकर शरीर छोड़ने की, लेकिन वो ऐसी अवस्था में वहाँ से यहाँ पर नहीं आ पाए। ये पहुँच गए वहाँ पर और उन्होंने वहाँ पर गाना शुरू किया। जब उन्होंने गाया तो भक्ति तीर्थ महाराज एक बालक की तरह रो रहे थे, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर किल्लोड़ करते हुए रो रहे थे, अश्रुओं की धाराएं बह रही थी। वो कह रहे थे मुझे इच्छा थी ब्रज में जाने की, मैं जा नहीं पाया, राधा रानी ने ब्रज मुझे यहाँ पर भेज दिया फिलाडेल्फिया के अंदर। मदन मोहन जी के भक्ति हुए भरे हुए स्वर के कारण वहाँ पर ब्रज प्रकट हो गया और महान संत भक्ति तीर्थ महाराज उसके अनुभूति हुई कि ब्रज यहाँ पर प्रकट हो रहा है। ऐसी जादू थी उनके गायन में। उसके बाद में हमारे स्तो कृष्ण प्रभु कैंसर से बीमार हो गए। हाँ, वो भक्तिवृंद हॉस्पिटल में थे 6 हफ्ते तक, नहीं शायद 3 महीने तक थे, दिन रात उनकी सेवा हो रही थी। उन्होंने आखिर में कहा था अपने विल में कि मुझे शरीर छोड़ना है तो मेरे गोपीनाथ में छोड़ना है मंदिर में, तो आज आखिरी अवस्था में आए तो हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया गोपीनाथ जी मंदिर में। और फिर हमारी जो गुरु भगिनी है करुणा मंजरी, उनका विवाह का समय था उस समय, तो हमने इन ब्रजवासियों को वहाँ बुलाया था विवाह में आने के लिए। जब विवाह में आए वो तो तुरंत मेरे घर में बोरीवली में उतरे, मेरे घर में उतरे। तो जब मेरे घर में उतरे तो मैंने कहा कि अरे आप जानते हैं हमारे वो गुरु महाराज की सेवा में रहते थे ना हमेशा स्तो कृष्ण प्रभु, वो शरीर छोड़ रहे हैं अभी, उनका आज लास्ट दिन है, महाराज जी भी वहाँ पर हैं, सब भक्त लोग वहाँ इकट्ठा हो गए हैं। तो इन्होंने सामान रखा और सीधे निकल गए बोरीवली से, मंदिर चले गए। मंदिर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने कीर्तन किया, वही लोग जो फिलाडेल्फिया में भक्ति तीर्थ महाराज के लिए गा रहे थे उन्होंने ही गोपीनाथ मंदिर में 300-400 भक्तों के बीच में राधानाथ महाराज जी श्री कृष्ण का हाथ पकड़ कर बैठे हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तब इन्होंने वहाँ पर भजन किया और उस सुंदर वातावरण में श्री कृष्ण प्रभु शरीर छोड़ के चले। क्या भाग्य है, देखो मदन मोहन जी जैसे भक्त के मुख से भगवान के प्रेम की ध्वनि सुनते हुए, सब परम भाग्य है। लेकिन ऐसा वातावरण और धाम का प्रकट करने की शक्ति थी उनके अंदर, जो गाते थे तो कई बार रोते थे और गाने का अर्थ समझाते थे कि कौन सा गाना है और क्या है। विशेष उनकी ये बात थी कि उनकी पत्नी के साथ देहांत होने के बाद में फिर वो यहीं आके बस गए और जब से मैं उनको मिला हूँ शायद 25-26 साल से हुए हैं अभी, तब से वो एक भजन जो है वो उन्होंने तो हजारों भजन गाए, हमेशा गाते थे, लेकिन एक भजन बार 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 गाते थे और वो था महल राधिका का बुहारा करेंगे उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। तो ये जो बुहारी, मतलब अच्छी भाषा में जब बोलते हैं तो झाड़ू मारने को बुहारी करना बोलते हैं, तो बुहारी ये बहुत अच्छा शब्द है, झाड़ू मारना ये लोकल लैंग्वेज है। तो वो रोज उनकी सेवा थी मान बिहारी लाल का श्रृंगार करना रोज, उसके बाद में दर्शन आरती होने के बाद में झाड़ू लेकर एक कपड़ा लेकर गेरुए रंग का सैफरन कलर क्लॉथ कंधे पे लेकर गमछा पहन के वो सीढ़ी से उतरते थे, या सीढ़ी यहाँ पर शुरू हो रही ना, यहाँ से चालू करेंगे और लास्ट तक झाड़ू लगाएंगे इसको। उनकी जीवन की तमन्ना थी कि ये बुहारी करते करते ही मेरा शरीर छूट जाए। और हम पूछते थे उनको और एक बार, तो वो कहते थे कि मैं बुहारी यहाँ पर लगा रहा हूँ क्योंकि इस सीढ़ियों से राधा और कृष्ण हमेशा ऊपर नीचे जाया करते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी चढ़ सकते हैं, कभी भी उतर सकते हैं। तो उनके पैरों में कोई कंकड़ काटा कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको बुहार दे रहता हूँ। वो पहले झाड़ू से निकालते थे, साफ करते थे, फिर अपने कंधे पर रखे हुए कपड़े से उसको पोंछते थे। इस प्रकार से हर सीढ़ी हर रोज वो साफ करते थे। उनकी आखिरी अवस्था 83 इयर्स की थी, उन्होंने सन 98 में शुरू किया था ये, तब वो 68 साल के थे। और तब उन्होंने बाबा से इच्छा प्रकट की थी कि मैं 68 साल का हो गया हूँ, शरीर अभी वृद्ध होते जा रहा है, तो अभी आप एक बार ब्रज की यात्रा निकालो, उनको दर्शन करने की इच्छा है, आप यात्रा निकालेंगे 40 दिन की तो सब जगह यात्रा होती जाएगी। तो उन्हीं की इच्छा के वजह से राधा रानी ब्रज यात्रा जो है शुरू हुई थी, जो आज भी चल रही है। तो हर यात्रा में उनकी एक विशेष ट्यून थी, वो ट्यून गाते थे और बाबा नृत्य करते थे शाम को कथा होने के पहले। बहुत सुंदर दृश्य हुआ करता था, बहुत ही इतने उत्कट भाव में गाते थे कि लोग रोते थे उनकी गजन सुनकर। और फिर महल राधिका का बुहारा करेंगे, मंदिर की सीढ़ी बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, हाँ लगाएंगे कुंजों में जाकर बुहारी, वह भाग्य झाकी निहारा करेंगे, सब जगह जाएंगे झाड़ू लगाएंगे, और जब मौका आएगा तब ठाकुर जी का दर्शन भी कर लेंगे। बहुत देर बाद सेवा करने के बाद जो सेवा में मन लग जाएगा तो कभी हमको मुरली की तान भी सुनाई पड़ेगी, कभी चरणों के नूपुर की ध्वनि भी सुनाई पड़ेगी, और आगे ज़्यादा ही भाग्य हुआ तो दर्शन भी हो जाएगा। और अपनी सेवा हम करते रहेंगे, और सेवा करते करते पेड़ की ओट में से छाया में से छुप छुप कर उनका दर्शन भी किया करेंगे, ऐसे भजन गाते थे वो। और पूरा जीवन उनका ये यही भजन उनका जीवन था, टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ राधा रानी। और इस बार जब इनकी यात्रा शुरू हुई तो 15 अक्टूबर को उनकी यात्रा शुरू हुई, कार्तिक शुरू होने के 2-3 दिन पहले शुरू होती है। उसके पहले उनके पोते का एक्सीडेंट हुआ था, तो घर गए थे कोशी में और मिलकर आए सबको, बोले यात्रा शुरू है मैं जा रहा हूँ अभी। यात्रा में आए तो बोले मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अभी चलना वलना नहीं होता है, मैं बसाने में रहूँगा, रोज़ ठाकुर जी की सेवा करूँगा, फिर बुहारी करूँगा, और शाम को जहाँ जहाँ यात्रा रुकती है पड़ाव में वहाँ जाके गाड़ी में गाऊँगा और गा के लौट के आऊँगा, और अगले दिन माँ दूसरी जगह जाऊँगा। तो पहले 3 दिन की यात्रा बसाने में होती है, यहीं से जाके घूम के लौट के आते हैं। तो फर्स्ट डे शाम को पंडाल में जब प्रोग्राम होता है, एंड में सत्संग होता है शाम को, तो उसमें इन्होंने गाया बढ़िया से, बहुत सुंदर तरीके से गाया, बाबा ने नृत्य किया, फिर सब लोग सो गए क्योंकि पड़ाव यही था ना बरसाने में। तो मान बिहारी जी यहीं थे, तो पड़ाव में मान बिहारी का विग्रह मंदिर बनाकर उनको लेके जाते हैं सर पे उठाकर। तो वहाँ मंदिर में पड़ाव में उन्होंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया और फिर यात्रा निकल गई। 5:30 बजे दर्शन करने के लिए निकल गई, 15,000 लोग पैदल निकल गए, तो मतलब मान मंदिर के सब लोग चले गए क्योंकि सब लोग यात्रा में थे। तो फिर उन्होंने श्रृंगार करके यहाँ पर आए और सीढ़ी में बुहारी करना शुरू किया उन्होंने। तो 9:30-10 बजे सब लोग लौट के आए यात्रा करके, पास था ना इधर, बहुत पास में, अन्य जगह पर 10-12 किलोमीटर चलना पड़ता है, दोपहर तक पहुँच जाते हैं, बरसाने में तो जल्दी पहुँच जाते हैं। 9:30-10 बजे सब लोग लौट के आए तो कुछ लोगों ने बताया कि आपका एक आदमी गिरा हुआ है वहाँ पर। सब लोग देखने गए तो मदन मोहन जी झाड़ू हाथ में ऐसा कड़क पकड़ा हुआ है और गिर गए पहाड़ में, और उनका शरीर वहाँ पर समाप्त हो चुका। हो सकता है उनको वो करते वक्त हार्ट अटैक आया होगा, या तो उनका शुगर बहुत डाउन हो गया रहेगा, या चक्कर आया होगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन वो सीढ़ी से गिरकर पहाड़ पर पड़े हुए थे और उनका देहांत हो गया था। तो कितना बाबा ने शाम को प्रवचन दिया और सब लोग रो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये श्री जी का चमत्कार है, क्योंकि श्री जी यहाँ रहती है, ये इसका प्रमाण है। उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि हम आपके मंदिर की सीढ़ी बुहारते बुहारते ही शरीर छोड़ना चाहते हैं, श्री जी ने पूरा किया उसको, इसका मतलब श्री जी यहाँ रहती है, आपकी पुकार सुनती है, आप पुकारने में चूकते हैं इसलिए आपको परिणाम नहीं नजर आता है, जो हृदय से पुकारता है उसकी पुकार सुनती है, वो उसकी इच्छा भी पूरी करती है। तो एक दिव्य गोलोक गमन का ये प्रमाण है, एक गौरवशाली तरीके से वो गोलोक धाम चले गए। सब ब्रजवासी कहते थे कि राजपुरी में अगले दिन थी, ठाकुर जी ने उनको बुला लिया वहाँ पर गाने के लिए, चले गए सेवा में। हाँ, वो भी अपनी सेवा करते करते, कोई बेड कैंसर नहीं, कुछ हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, लास्ट तक सेवा करते करते, सेवा करते ही करते ही ठाकुर जी के धाम में अगली सेवा करने के लिए पहुँच गए। ऐसा ऐसे भक्तों को मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे श्रद्धा बढ़ती है हमारी। हाँ, हम लोग वो सिद्धांत बहुत सुनते हैं लेकिन जब ऐसे भक्तों को प्रभुपाद जी आज होने के रहने के पहले भी भगवद गीता भी थी, भागवत भी था, सब कुछ था, लेकिन जब लोगों ने उदाहरण देखा तो शास्त्रों में उनका विश्वास बढ़ा, भक्ति की प्रक्रिया में विश्वास बढ़ा और जीवन में भक्ति उतारने के लिए प्रेरणा मिली जब किसी उदाहरण को हम देखते हैं। तो सब कुछ सब जगह पर उपलब्ध है, मार्केट में तो पुस्तकों के भंडार लगे हुए हैं, वो पढ़ के सब लोग शुद्ध भक्त तो नहीं बनते ना, क्योंकि हमको उदाहरण चाहिए, हमारे सामने उदाहरण होते हैं, ऐसे भाव के उदाहरण, भक्ति के उदाहरण, तो हमारी श्रद्धा भी बढ़ती है, हमारा प्रेम भी बढ़ता है, हमारे सेवा करने का भी भाव जो है वो वृद्धिंगत हो जाता है। मदन मोहन जी ऐसे महान भक्त, एकदम सिंपल, कहीं भी नजर नहीं आएंगे आपको, हाँ कुछ मोस्ट इनकॉन्स्पिक्यूअस बाय हिज यू नो डिमीनर, कभी भी अभी 83 इयर्स में उम्र में इतनी बड़ी अवस्था में, एक वृंदावन में हमारे एक मित्र हैं, उनकी माता ऐसे ही बीमार थी, बहुत बुरी अवस्था में थी वो, तो वो ऐसे ही जर्जर हो गई थी बहुत, तो उनको मिलने गए थे, तो ये लोकल ट्रांसपोर्ट से गए, कैन यू इमेजिन दिस, वो गाड़ी भेजने की बात कर रहे थे, ये लोकल ट्रांसपोर्ट पकड़ के उनको मिलने गए, वहाँ पर जाकर गाया, उनको आशीर्वाद दिया, दूसरे दिन वो गुजर गई, या कुछ दिन बाद में इनका देहांत हो गया। ऐसे ब्रज में बहुत अच्छे अच्छे ब्रजवासी रहते हैं, ठाकुर जी की कृपा हुई तो उनकी मुलाकात भी होती है, नहीं तो हम लोग ऐसे ऐसे डोलते यहाँ वहाँ चले जाते हैं, लेकिन ब्रज में जो है ना ऐसे ऐसे मणि, मूल्यवान मणि जो हैं सब जगह बिखरे हुए हैं, उनके संग में बैठेंगे तो हमको पता चलेगा कि भक्ति क्या चीज़ है। हम लोग तो चार नियम पालन करते हैं, सोलह माला करते हैं, बड़े नियम से करते हैं, लेकिन वहीं हमारी गाड़ी अटक जाती है, चार माला, चार नियम और सोलह माला बस, उसके आगे ज़्यादा प्रगति नहीं होती है, और वही जप में सोना और वही जप में अलग अलग प्लानिंग करते रहना, वही कागज़ में नोट बनाना, फ़ोन लेना, SMS करना, यही हमारी मन मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी भी दौड़ वही तक है, आगे नहीं जाती है, क्योंकि जब तक संत लोग कृपा नहीं करते हैं, जब तक उनका उदाहरण सामने नहीं आता है, तो ये हम लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, यहीं पर अटके रहते हैं। तो गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज ने सब इनका परिचय कराया था, और रमेश बाबा जी महाराज भी यहाँ पर अब पिछले 56 साल से रह रहे हैं, अपनी उम्र की 12 साल की अवस्था में यहाँ पर आए थे, 3 बार घर छोड़ने भागने का प्रयास किया, एक बार डर के मारे वापस लौट के गए, एक बार पुलिस ने पकड़ लिया लौट के चले गए, अगले बार सोच समझ के निकले और यशस्वी हो गए भागने में, बहुत सारा प्रवचन किया ब्रज में, बहुत जोरदार प्रवचन किया, फिर एक दिन ऐसा अनुभूति उनको हुआ, इतने सारे प्रवचन करता हूँ लेकिन हृदय के अंदर कुछ अनुभूति है ही नहीं, खाली रटते जा रहा हूँ, रटते जा रहा हूँ, रटते जा रहा हूँ, अभी ऐसा प्रवचन बंद होना चाहिए, तो सब बंद करके फिर यहाँ पर आ गए कि भाई कुछ अनुभूतियाँ निर्माण करूंगा तो फिर उस अनुभूति को पर कुछ बोल पाऊंगा, अनुभूति के बिना खाली रटना 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 और बोलना ये सब सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर आके, तभी यहाँ पर 56 साल पहले डाकुओं का डेरा था, अभी भी एक गुफा है वहाँ पर डाकू लोग सब अपना सामान ला के रखते थे, तो यहाँ पहुँच गए भजन करने के लिए, घूमते घूमते यहाँ पर प्रेम सरोवर में उनको अपने गुरु जी का परिचय हुआ प्रियाशरण जी महाराज से, और प्रियाशरण जी महाराज ने उनको दीक्षा दिया और मंत्र दिया, फिर आदेश दिए, फिर यही रहने लगे, फिर उनकी जब घर छोड़ के गए तो उनकी माता जो है बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि इनका जन्म जो है वो मन्नत मांगने से हुआ था, इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ये पिता माता जो है इनका नाम शुक्ला था, शुक्ला, तो शुक्ला परिवार रामेश्वर में गए थे, उन्होंने वहाँ पर मन्नत मांगी थी और उस मन्नत के प्रसाद के रूप में इनका जन्म हुआ था, तो उनका नाम था रामेश्वर प्रसाद शुक्ला। इतना मूल्यवान जन्म होने के बाद 12 साल के बाद में भाग गया बच्चा, तो उनको ढूंढते ढूंढते वो ज्योतिष को दिखा के बहुत सारे लोगों को मिलते 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 माता यहाँ पहुँच गई, तब वो नीचे रहा करते थे, तो जैसे माता आ गए तो ऊपर रहने गए, माता को डांट फट कर दिया, बाबा बताते हैं कि उनके गुरु ने उनको बहुत डांटा, माता को डांटते हो, हमारे प्रेम के वजह से धाम में आई है आपको बसने के लिए, कोई भौतिक हेतु से नहीं आई है, वो क्यों डांटते हो उनको, रहने दो उनको धाम में, तो फिर माता नीचे रह गई कुटी पर, बाबा ऊपर रहने लगे। और बाबा ने बहुत लड़ाई लड़ी यहाँ पर, ये गेवर बन जो आप देख रहे हैं कितना सुंदर, देखो ये मान इंगित वन कितना सुंदर बनाया है, गेवर बन की यहाँ पर बहुत नुकसान हो रहा था, लोग नुकसान कर रहे थे, लकड़ी बकड़ी तोड़ रहे थे, तो कई साल 46 साल तक लड़ाई लड़ी उन्होंने गवर्नमेंट के साथ, तब ये अभी सुरक्षित विभाग में आ गया है, क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्टेड हेरिटेज, तो ये उन्होंने लड़ाई लड़के फिर पत्थर यहाँ पर सखीगिरी में तोड़े जा रहे थे पहाड़ों के बम लगाकर, उसकी लड़ाई लड़के पत्थर तोड़वाना बंद हो गया, क्योंकि आप लोग मंदिर का जीर्णोद्धार कर सकते हो, वनों का भी कर सकते हो, पत्थर एक बार टूट गया तो क्या कर सकते हैं? एनीबडी कैन रिनोवेट माउंटेन, नोबडी कैन रिनोवेट माउंटेन, वैसा ही रहेगा वो। तो पत्थर की टुड़वाई जो है इन्होंने बहुत संघर्ष करके बंद करवाई। वे जमुना जी को शुद्ध करने का प्रयास, जमुना जी को पुराना वैभव प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। इसके आगे भारत में गौ हत्या बंद करने के लिए लोग आंदोलन करने वाले हैं। वो कहते हैं कि मेरा जीवन जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ संघर्ष होते रहता है, बचपन से हो रहा है, जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर संघर्ष होते रहता है। लेकिन संघर्ष भी अगर भगवान के लिए करते हैं तो वो परिपूर्णता है जीवन की। लड़ना ही है तो भगवान के लिए लड़ना चाहिए, भगवान के धाम के लिए लड़ना चाहिए। एक है उनकी निर्भयता, वो डरते नहीं किसी से, और एक उनका हरिनाम का आश्रय, हरिनाम पर श्रद्धा जो है ना बहुत सराहनीय है। हर चढ़ाई, हर लड़ाई, हर संघर्ष उन्होंने केवल हरिनाम के आधार पर ही जीता है। उनकी यात्रा में 15,000 लोग पैदल चलते हैं। देर इज नो फीस, देर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन, रहना खाना सब कुछ फ्री। और उनकी गाय गौशाला है यहाँ पर, 23,000 गाय वहाँ पर रहती है, 23,000 काउज, उसमें केवल 100-200 ही दूध देती है, बाकी सब तो ऐसे इंजर्ड डिसीज्ड, ऐसे दूध नहीं देने वाली, किसी ने छोड़ दिया उसको। तो मुसलमान लोग गाय को उठा के ले जाते हैं ना यहाँ पर काटने के लिए। दुर्भाग्य ऐसा है कि गाय को रखने से एक्स अमाउंट मिलता है, गाय को काटने से उसका 10 गुना पैसा मिलता है। तो मुसलमान लोग उठा उठा कर गौशाला में से ले जाते हैं। तो लोग को बता दिया गया, इन्होंने बताया है कि आपकी गाय ऐसे ऐसे है, आपको नहीं जम रहा है, गौशाला में सुपुर्द करो, बट दे कांट टेक इट बैक अगेन। वैसे लोगों ने जमा करते 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 ऐसे 23,000 गाय हो गई है। उनका दिन का 10 लाख रुपया खर्चा है, एंड दे डोंट नो कल पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन सेवा हो रही है निरपेक्ष भाव से। अच्छा, मुझे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप लोग सब लोग यू आर फ्रेश ना, और आर यू टायर्ड? ओके, यहाँ पर गौशाला चलाने वाले एक बाबा है, उनका नाम है ब्रज चरण बाबा। उनको बहुत प्रेरणा हुई कि बाबा ने गाय की रक्षा के लिए गौशाला खोल दिया। योगायोग की बात ऐसी है कि वो जो गौशाला की जगह है वो पहले हम लोग आय कैम्प के लिए लेने वाले थे, लेकिन वो बात नहीं बनी और आखिर इन्होंने वो बात जगह ले लिया और वहाँ गौशाला हुई। वो तो अलग बात है, कोई बात नहीं। तो ब्रजचरण बाबा पहले भी यहाँ रहा करते थे। जब गौशाला बनने का संकल्प हुआ तो उन्होंने बाबा से कहा कि मैं इस गौशाला का देखभाल करूँगा। तो जो गौशाला में रहता है वो गाय का दूध भी पीता है, मक्खन भी खाता है ना, गाय के द्वारा जो लाभ होता है उसको लेता है, वो सहज है, सहज नेचुरल थिंग। तो एक दिन बाबा ने उनको बताया, आप गऊ की सेवा करते हो तो आपको गऊ का दूध और गाय का कोई प्रोडक्ट जो है उसका लाभ नहीं लेना चाहिए। गौशाला के ऊपर निर्माण हुआ धन पे पर आपको रहना नहीं चाहिए, अब तो बाबा हो ना। उस दिन से ब्रजचरण बाबा ने गौशाला में भोजन करना बंद कर दिया, गौ का दूध पीना बंद कर दिया। दिन रात वो लाखों रुपये का व्यवहार करते हैं गऊ की रक्षा के लिए। एक ट्रीटमेंट का हिसाब किताब है उनका, हॉस्पिटल है अंदर गाय का, एक जगह पर सिक गाउज है उनका इलाज करते हैं, एक जगह पर मैटरनिटी होम है उधर बहुत सारी गाय डिलीवर करती रहती हैं, एक जगह पर गाय का दूध निकालना है, ग्वाल बाल वहाँ पर रखे हुए हैं, एक जगह उनका गोबर, 1,00,000 किलो गोबर हर रोज पैदा होता है, उसका एक प्रोसेसिंग है, निकालना उसको आगे आगे करना, खेत में डालना वगैरह, बहुत सारे बड़े बड़े, ऐसा नहीं है कि भाई 4 गाय तुम्हारे पास 10 किलो गोबर गिरता है, ऐसा नहीं है। सो इतना सारा बहुत बड़ा मैनेजमेंट करते हैं। लंच का समय होता है तो ऑफिस छोड़ के मानपुर जाके भिक्षा करते हैं, भिक्षा मांग के रोटी खाते हैं, फिर जाके ऑफिस में बैठते हैं, फिर काम करते हैं, फिर शाम को भूख लगती है फिर गांव में जाते हैं भिक्षा करते हैं, सूखी रूखी रोटी खाते हैं और फिर अपना मैनेजमेंट संभालते हैं। दिस इज समथिंग यू नो हाउ वन कैन बिकम सेल्फलेस इन दिस सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये इसका एक क्या कहते हैं उसको, द हाइएस्ट पॉइंट, आई कैन नॉट इमेजिन, पिनेकल एपिटोम, सर्वोच्च बिंदु है ये, कि सेवा में आदमी कितना निस्वार्थ हो सकता है, इसका एक प्रमाण है। ऐसे ही कई भक्त लोग यहाँ पर रहते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। यहाँ पर मान मंदिर के अंदर कोई सीडी और कोई पुस्तक कभी भी बिकते नहीं है, फ्री में दे देते हैं, जो भी बनता है फ्री में देते हैं। वो कहते हैं राजा रानी सब कुछ देती है और हमारा धन जो है वो केवल हरिनाम है। जब भी कोई कुंडू का जीर्णोद्धार करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, कुंड का जब भी काम करना होता है तो कुछ नहीं करते, एक कीर्तन पार्टी वहां भेज देते हैं। और वो कीर्तन पार्टी ऐसा नहीं कि 12 घंटा 3 दिन कीर्तन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। 24 आवर्स फॉर अनलिमिटेड टाइम कीर्तन करते रहते, जब तक जीर्णोद्धार की कोई योजना न बने तब तक ये पार्टी 24 घंटा वहां बैठकर कीर्तन करते रहते हैं। 24 आवर्स अनलिमिटेड, ऐसा कोई लिमिट नहीं कि एक महीने का बंद करना है, फिर वो कुंड का उद्धार होता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और कहीं जाते हैं। इतनी श्रद्धा हरिनाम के अंदर है, वो जानते हैं कि हरिनाम के अंदर सब कुछ है। वट एवर यू डिजायर टू अचीव इन लाइफ इज देयर इन हरिनाम, इज अचीवेबल थ्रू चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। इतनी श्रद्धा मैंने कहीं देखी नहीं है। तो आप भी मान मंदिर आए हो, मान इंगित वन में बैठे हो, हाँ, भक्तों ने बहुत मेहनत किया है, इतना सुंदर वन आपकी छाया के लिए, आपके आनंद के लिए बना के रखा है, ताकि आप यहाँ बैठकर अच्छी तरह सत्संग कर सको, भगवान का नाम गीत गा सकते हो। तो ये जगह पर बैठकर आप उस श्रद्धा को ले जाओ हरि नाम के ऊपर, दैट इज द गिफ्ट ऑफ दिस प्लेस। और दैट फेथ इफ यू टेक फ्रॉम हियर देन योर यात्रा इज सक्सेसफुल। नहीं तो यात्रा में क्या है, हम लोग रटते हैं किताबों में से यहाँ वहाँ की कहानी जोड़ लेते हैं, कहानी बोल लेते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग एट ऑल। वो हमको रास्ता पता है, हमको सब पता है, यहाँ पे यहाँ लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, एवरीथिंग वी नो, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। सब ज्योग्राफी का किताब निकाल के, इतिहास किताब निकाल के आप सब कुछ जान सकते हो, लेकिन भक्ति ये अलग वस्तु है। ये सब कथा मालूम होना, सब ब्रज की पहचान होना, ब्रजवासियों से दोस्ती होना, ये सब इट इज ऑल एक्सटर्नल, बट इज इंटरनल इज डिवोशन, दैट इज वॉट यू वॉन्ट। और ये और वो टोटल अलग विषय है। ऐसे कई कथाकार हैं ब्रज में जो चारों नियम तोड़ते हैं लेकिन बहुत फेमस हैं, इतनी मधुर कथा करते हैं कि सुनने वाले रोते हैं, लेकिन फिर भी चार नियम तोड़ते हैं बाहर जाकर। सो बीइंग एन एक्सपर्ट स्पीकर ऑफ कृष्ण लीला इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वट इज इम्पॉर्टेंट इज डिवोशन, द फेथ इन द होली नेम। और वो हमको प्राप्त होना चाहिए, और वो प्राप्त आपको यहाँ हो सकता है, ये रज आपको वो प्राप्ति करा सकती है। इसलिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, मान मंदिर आए हो ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, बार बार यहाँ बुलाएं और वो श्रद्धा प्राप्त कराएं, जिसके द्वारा हमारा जीवन सफल हो सकता है। इन दिस वेरी लाइफ टाइम ना हम फेमस होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना सुंदर होंगे, ना धनवान होंगे, ना प्रसिद्ध होंगे, ना इन्फ्लुएंशियल होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं नहीं पहुँचाती हैं। कि नाम जो भगवान का है वो भगवान और राधा रानी के चरणों तक आपको पहुँचा सकता है। इसलिए आप लोग यहाँ भिक्षा मांगो बैठकर, दो मिनट आंख बंद करके प्रणाम करो और श्रद्धा से भिक्षा मांगो कि हमें वो नाम के जप की प्रक्रिया पर आप श्रद्धा दिला दो, आपकी सेवा दिला दो। और सेवा करते करते ही हमारा शरीर छूटे आपकी याद में, और जहाँ भी आप रखे, पाताल में, नरक में, स्वर्ग में, कहीं भी रखे, आपकी सेवा में रखें, यही आप कामना करो। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।